हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रवि पहले ही आदित्य को वो पेपर सुबह सुबह सौंपने वाला था, इसलिए वो जाग रहा था। आदित्य ने जैसे ही उसे कॉल किया, रवि ने कॉल रिसीव कर ली और जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोला, मैं बस निकल ही रहा था सर, आपका काम हो गया है। हाँ ठीक है, बस जल्दी से आओ। आदित्य ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रवि को आदित्य के बोलने का अंदाज काफी बदला हुआ लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि आखिर आदित्य ने इतना ही बोलकर कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर दी। फिर भी वो जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। और इधर आदित्य के विला में, आदित्य के फोन करने के बाद सुनैना को देखने के लिए डॉक्टर आ चुके थे। सुनैना का चेकअप करने के बाद उन्होंने बताया कि सुनैना ने कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और रात को भूख और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी, और ऊपर से मैंने उसे कमरे में भी बंद कर दिया था। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने फिर से अफसोस करते हुए अपने मन में ये बात सोची। डॉक्टर सिन्हा ने सुनैना को इंजेक्शन दिया और बाकी सारे निर्देश आदित्य और गीता को बताकर चले गए। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ देर में सुनैना को होश आ जाएगा और घबराने की कोई बात नहीं है, बस उसके खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर की सलाह सुनकर आदित्य और गीता दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर गीता डॉक्टर के साथ बाहर निकलने लगी। कमरे से बाहर जाते हुए गीता ने आदित्य से कहा कि वो सुनैना के लिए कुछ खाने को बना देती है। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। गीता और डॉक्टर के चले जाने के बाद वो खुद सुनैना के सिरहाने बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अपने मन में बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, नहीं आने देना चाहिए था तुम्हें अपनी लाइफ में। मैं खुद एक मेस हूँ, इतना उलझा हुआ सा अपनी जिंदगी में, तुम्हारी भी हालत खराब हो गई मेरी वजह से, सब मेरी गलती है। जैसे ही सुनैना को होश आया, उसने आंखें खोलकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, सब तुम्हारी ही गलती है, क्यों बंद किया था मुझे कल रात को कमरे में। आदित्य ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सुनैना उसके चेहरे की तरफ देखकर समझ गई कि वो क्या सोच रहा होगा। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। मैंने कुछ बोला क्या, कुछ सुनाई दिया क्या तुम्हें, और तुम खाना क्यों नहीं खाती हो ये बताओ पहले, और ऊपर से सारा इल्ज़ाम भी अब मुझ पर लगा रही हो, मैंने कब तुम्हें खाना खाने से मना किया। सुनैना के इस तरह बोलने पर आदित्य थोड़ा सकपका गया। वो सोच रहा था कि जो बात वो अपने मन में सोच रहा है वो सुनैना ने कैसे सुन ली, लेकिन फिर वो बात बदलते हुए सुनैना को खाना ना खाने के लिए डांटते हुए बोला, लेकिन मुझे कमरे में बंद क्यों किया था, और खाना वो मुझे अकेले खाने का मन नहीं करता। आदित्य समझ रहा था कि सुनैना की इस बात का क्या मतलब है, लेकिन वो अभी उससे कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता था जिसे वो खुद भी निभा ना पाए। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद आदित्य बोला, अकेले क्या, कौन चाहिए तुम्हें साथ में खाना खाने के लिए, गीता दी हैं तो उनके साथ खा लिया करो। हाँ ठीक है, फिर मैं खा लूंगी जब मुझे खाना होगा, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना थोड़ा गुस्से में बोली। वो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी क्योंकि उसे काफी कमजोरी लग रही थी और इसीलिए वो उठ नहीं पा रही थी। आदित्य ने आगे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानता था कि सुनैना उससे थोड़ी नाराज है। वो अभी कुछ भी बोलेगा तो बात और बढ़ेगी क्योंकि सुनैना की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी। आदित्य ये नहीं चाहता था कि सुनैना की तबीयत और ज्यादा खराब हो, वो भी फिर से उसी की वजह से, और इसलिए उस कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद उन दोनों को किसी के सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने की आवाज़ सुनाई दी और उन दोनों का ध्यान उधर ही हो गया। गुड मॉर्निंग सर, मैं अंदर आऊं या फिर नहीं, सुनैना और आदित्य दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो उन दोनों को सामने रवि खड़ा दिखाई दिया। रवि को देखकर आदित्य तुरंत बेड से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा और सुनैना भी, जो अब तक बेड पर लेटी हुई थी, उठकर बैठने लगी। गुड मॉर्निंग रवि, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ। हाँ मैम, सर ने बुलाया था कुछ इम्पोर्टेंट काम से, आदित्य ने रवि की बात बीच में काटते हुए बोला। रवि तुम स्टडी रूम में चलो, मैं भी वहाँ पर ही आता हूँ। हाँ मैम, रवि आदित्य के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। आदित्य उसके पीछे कमरे से बाहर जाने लगा तो सुनैना पीछे से बोली, इस बार तो रूम लॉक नहीं करोगे ना, तुम पीछे नहीं आओगी तो बिल्कुल भी नहीं, आदित्य काफी किलकिलाता हुआ बोला और फिर तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सुनैना हल्का सा मुस्कुराई और साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल फोन उठाकर उसमें कुछ देखने लगी। आदित्य कमरे से बाहर निकलकर सीधा स्टडी रूम में जाने के बजाय पहले सीढ़ियां उतरकर नीचे गया और गीता को आवाज लगाते हुए बोला, उसे जाकर कुछ खाने को दे आइए दी, और अपने सामने ही खिला भी दीजिएगा, और अगर वो ज्यादा नखरे करे तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं स्टडी रूम में हूँ रवि के साथ। ठीक है भैया, गीता ने कहा। आदित्य उसे ये बोलकर वापस ऊपर स्टडी रूम में चला गया। क्रमशः